ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के इतिहास और क्षमता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ नानूतकर और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारतीय वायुसेना के इस साल हम 92वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इस वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश भर में कई गतिविधियां आयोजित हुई और कई और एक्टिविटीज और गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। और 1932 में जब हम कहें कि औपनिवेशिक काल के दौरान जब भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का आजादी के बाद का जो दौर था, उस दौर में भी हमने अलग अलग चरणों में भारतीय वायुसेना के लगातार विकास, पराक्रम और इसकी बढ़ती क्षमता को देखा है। और ऐसे दिन जब हम रेजिंग डे मनाते हैं या वर्षगांठ मनाते हैं, वो यही मौका देते हैं कि हम विश्लेषण कर सकें अपनी सेनाओं का। जैसे भारतीय वायुसेना का आज हम इस चर्चा में विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी किस हद तक अपनी क्षमता को विकसित कर पाए हैं और क्या क्षमता है और क्या एक यात्रा रही है भारतीय वायुसेना की। तो आज हम इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं हमारे साथ दो मेहमानों को। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल SJ नानूतकर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी
जी। हमारे साथ वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक अजय बनर्जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए चर्चा से पहले ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
भारतीय वायुसेना निरंतर भारत की संप्रभुता का स्तंभ और रक्षा की पहरेदार रही है। कई दशकों से भारतीय वायुसेना ने अपने पराक्रम, शक्ति और सेवा से देश को बहुत कुछ दिया है। भारतीय वायुसेना का एक समृद्ध इतिहास है और इस शौर्य से भरे इतिहास की बदौलत हम आज एक स्वाधीन राष्ट्र का हिस्सा हैं। लगातार अपनी क्षमता और शक्ति का विस्तार और विकास करके भारत धरती और जल की तरह आसमान में भी अपनी क्षमता की बड़ी काबिलियत रखता है। भारतीय वायुसेना इस साल 92वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रही है। इस अवसर पर देश भर में कई गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने रेजिंग डे का उत्सव मनाते हुए चेन्नई में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित हुआ ये समारोह बहुत आकर्षक और गौरवपूर्ण रहा। एक अद्भुत एयर शो हुआ जिसका विषय था सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर भारतीय वायुसेना। ये विषय बताता है कि भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर 4,300 किलोमीटर की मेगा कार रैली भी आयोजित की जा रही है। लद्दाख में थोइस मिलिट्री एयरबेस से इस रैली को रवाना किया गया। ये रैली 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग एयरफोर्स स्टेशन पर समाप्त होगी। एक ऐसी ही रैली दिल्ली से रवाना हुई। भारतीय वीर विजेता नाम की इस कार रैली को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत के साथ मिलकर रवाना किया। ये रैली भारतीय वायुसेना की ओर से उत्तराखंड वॉर मेमोरियल के साथ मिलकर आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास, रक्षा मिशनों और वायुसेना के वीरों की वीरता के बारे में आज की पीढ़ी जानकारी प्राप्त कर सके। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। यहीं से भारत की वायु रक्षा क्षमताओं की शुरुआत हुई। भारतीय वायुसेना की पहली उड़ान 1933 में अप्रैल महीने में हुई, जिसमें 6 रॉयल एयरफोर्स के प्रशिक्षित अधिकारी और 19 कर्मियों ने 4 वेस्टलैंड वेप्टी सेकेंड डे बाईप्लेन उड़ाए। द्वितीय विश्व युद्ध के करीब आते ही वायुसेना का विस्तार हुआ और भारतीय बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए 5 तटीय रक्षा उड़ाने बनाई गयी। 1941 में प्रशिक्षण तेज हुआ, जिससे वेस्टलैंड लिसेंडर और हॉकर हरिकेन जैसे उस समय के विमानों की ओर रुख किया गया। 1944 के अंत तक भारतीय वायुसेना के पास 9 स्क्वाड्रन थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण हुआ। कई स्क्वाड्रन्स ने टेम्पेस्ट और स्पिटफायर जैसे नए विमानों में बदलाव किया और नई दिल्ली में मुख्य कार्यालय की स्थापना हुई। 1948 तक अपनी संचालन क्षमता का भारतीय वायुसेना ने नए सिरे से विस्तार किया। जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र बना और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने अपने नाम से रॉयल शब्द हटा दिया। उस समय वायुसेना के पास 6 लड़ाकू स्क्वाड्रन थे, जिसमें स्पिटफायर, वैम्पायर और टेम्पेस्ट जैसे विमान थे। इसके अलावा एक B-24 बम बरसाने वाला स्क्वाड्रन, एक C-47 डकोटा परिवहन स्क्वाड्रन और दूसरी इकाइयां भी शामिल थीं। वायुसेना की ट्रेनिंग ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तर्ज पर होती थी और हैदराबाद तथा जोधपुर में प्रमुख ट्रेनिंग संस्थान बनाए गए थे। 1950 के दशक में वायुसेना का विस्तार हुआ, जिसमें दसॉल्ट, ओरेगन और फेयरचाइल्ड C-119 जैसी विमान शामिल किए गए। 1957 तक क्षमता को बढ़ाते हुए मिस्टियर, आईवीएस, हंटर और कैनबरा जैसे उन्नत विमान वायुसेना में जोड़े गए। 1961 में कांगो मिशन के दौरान वायुसेना की क्षमताओं की परीक्षा हुई और सोवियत संघ से MiG-21 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान प्राप्त हुए। 1966 से 1971 के बीच वायुसेना ने और उन्नति की, जिसमें MiG-21 FL और सुखोई जैसे नए विमान शामिल किए गए। 1970 में डुंडिगल में वायुसेना अकादमी की स्थापना हुई, जिससे प्रशिक्षण सुविधाएं बेहतर हुई। 1999 के करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना की हवाई क्षमता ने एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में भारत को साबित किया। इसके बाद तेजस जैसे स्वदेशी विमान भी शामिल किए गए, जिससे भारतीय वायुसेना एक आधुनिक और सशक्त ताकत बन गई। अब भारतीय वायुसेना विश्व की चुनिंदा महाशक्तियों में से एक है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू और परिवहन बेड़े में आधुनिक तकनीक को शामिल कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। रफाल और LCA MK-1A जैसे नए लड़ाकू विमानों से वायुसेना की हवा में मार करने की क्षमता में मजबूती आई है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ भारी भरकम सामान ले जाने और जटिल मिशनों को अंजाम देने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही वायुसेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक को अपनाकर नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाया है। आने वाले समय में अत्याधुनिक तकनीकों और क्षमता को हासिल करने के लिए वायुसेना निरंतर काम कर रही है। क्वांटम तकनीक से लेकर हाइपरसोनिक हथियारों को बढ़ाने पर प्रयास जारी हैं। अंतरिक्ष क्षमता को हासिल करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार।
ननोत्कर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा, ये वर्षगांठ किस तरह से आज की जो पीढ़ी है हमें सभी को भारतीय वायुसेना के बारे में क्या बताती है, क्या संदेश देती है और इस वर्षगांठ को हम कैसे लें, आप क्या कहना चाहेंगे?
देखो, ये 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और एक दर्जन भर अफसर और वायुसेना में एक टेक्नीशियन जो रॉयल एयरफोर्स के अंडर ट्रेन हुए थे उनको भार संभालने के लिए इशारा मिला था और इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और उसके बाद में आजादी के बाद में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जबकि विभाजन की वजह से कई सारी यूनिट्स जो फॉर्म हुई थी इसके दौरान 32 और आजादी के दौरान वो पाकिस्तान में चली गई थी और कुछ इक्विपमेंट उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था जिसके बलबूते पे भारतीय वायुसेना ने कमान संभाली थी और इसका श्रेय उन दिनों के जो छोटी सी रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो फॉर्म हुई थी, जैसे कि सब जानते हैं जम्बो मुजुमदार नाम से जो व्यक्ति जानी जाती है, उन्होंने भविष्यकाल की जो सोच थी उनकी उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय वायुसेना की स्थापना करी थी और बहुत ही अहम काम उन्होंने किया था क्योंकि उनका जो विजन था उसका ट्रांसलेशन आज हम जो देख रहे हैं उसमें हुआ है। ये सिलसिला जो 32 में शुरू हुआ था और फिर आजादी के बाद में जो कंटिन्यू रहा और वहां से लेके आज हम जो जिसका हमने प्रदर्शन देखा है चेन्नई में उसमें उसका ट्रांसलेशन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी रही है और 90 साल 92 साल का जो पूरा भारतीय वायुसेना का जो इतिहास है वो बहुत ही अहम रहा है। हर एक युद्ध में एक लीड रोल समझो लिया है और जैसे कि भारतीय वायुसेना के मुखिया ने आज कल कहा कि वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट टू एनी कैलामिटी, एनी डिमांड, एनी चैलेंज दैट द नेशन फेसेस, क्योंकि हमारी रीच, हमारी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक है, हमारा जो स्पीड है वो सबसे तेज है और इन दोनों चीजों को सक्षम बनाने के लिए हम हमेशा 24/7 365 डेज तैयार है। तो ये पूरा इतिहास है और इसकी जब जब इसकी जरूरत पड़ी है तो भारतीय वायुसेना ने सही मायने में उभर कर रही है।
अजय जी, क्योंकि आप एक लंबे समय से रक्षा क्षेत्र को पत्रकारिता के जरिए कवर करते रहे हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे कि 92 साल का हालांकि इतिहास बहुत लंबा है, किस तरह से भारत के लिए भारतीय वायुसेना के महत्व को इन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है बढ़ते हुए, और कैसे जो कल का दिन रहा भारतीय वायुसेना की, जिस वर्षगांठ की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे ये मौका देता है कि हम भारतीय वायुसेना के महत्व को भारतीय रक्षा में समझ सकें।
जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। तीन चार बातें, पहले तो 65 की जंग पाकिस्तान के साथ और 71 की जंग पाकिस्तान के साथ, उन दोनों जंगों में भारतीय वायुसेना का बहुत अहम रोल रहा। सब जानते हैं बांग्लादेश में यानी तब ईस्ट पाकिस्तान में तब क्या करा भारतीय वायुसेना ने और कैसे सब कुछ ध्वस्त कर दिया था। सन 65 में आजादी के बाद पहली बार, सितंबर 1965 की बात है, जब पहली बार हमने एयर टू एयर कॉम्बैट में पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था। उसके बाद आ जाइए कारगिल के युद्ध में, जिसमें हम सब जानते हैं कैसे वायुसेना ने LOC के उस तरफ जाके और दुश्मनों को और जो पाकिस्तानी सेना के भेजे हुए लोग थे उनको निपटाया था। उसके बाद आ जाइए बालाकोट पे सन 2019 में, कैसे वायुसेना ने भारतीय सीमा से एक मिसाइल दागी और जैश मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप पे लगी और टेररिस्ट मारे गए। उसके बाद आप एक चीज देखिए कि भारतीय वायुसेना का एक रोल है जिसे कहते हैं ह्यूमन असिस्टेंस इन डिजास्टर, HADR बोला जाता है उसको सेना ही टर्म्स में। उसमें बहुत सारे वायुसेना के जहाज जाते हैं, जैसे भी हाल फिलहाल में एक टाइफून आया था साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में, लाओस वियतनाम में, वहां पर हजारों टन माल वायुसेना लेके गई। ऐसे ही वायुसेना के जहाज कई ऐसी जगहों में यूज होते हैं जहां जहां हम HADR करते हैं, हमारे जो भारतीय मूल के लोग फंस जाते हैं कई जगहों पर, जैसे सूडान में हुआ था या कुछ देर पहले यमन में हुआ था या उससे पहले यूक्रेन के पास लोगों को निकालने की बारी आई थी तो वायुसेना के विमान भेजे गए थे। वायुसेना की क्षमताएं यही नहीं है, वायुसेना की क्षमताओं में आज जो इजाफा हुआ है उसमें एक ड्रोन आ रहे हैं, आम ड्रोन जिसे बोला जाता है, जिसे हम अक्सर टीवी पे देखते हैं कि अमेरिका ने ड्रोन के जरिए से हमला करा, वैसे ही उसी प्रकार के आम ड्रोन वायुसेना और भारतीय नौसेना और भारतीय थलसेना के बीच में आने वाले हैं। और भारतीय वायुसेना के पास एक नया मैंडेट है जिसे कहते हैं स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस, वो जो यानी हमारी अंतरिक्ष की जो ऑपरेशंस हैं या उस पर निगरानी रखने की बातचीत है, उसके सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखने की बातचीत है, वो भी वायुसेना के पास आज की डेट में एक मैंडेट है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको स्पेक्ट्रम मैंने आपके श्रोताओं को बता दिया है कैसे वायुसेना क्या क्या इस समय काम कर रही है। कमल
नरोत्कर साहब, अगर हम अब क्षमता की थोड़ी बात करें तो वायुसेना में जहां एक तरफ अब कोशिश है या पिछले कुछ समय में कोशिश हुई है कि जो भारत का जो फाइटर फ्लीट है, लड़ाकू विमानों का पूरा दस्ता है, उसका आधुनिकीकरण हो, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कोशिश है कि जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उसका भी तरीके से उसकी भी व्यवस्था हो, उसका भी आधुनिकीकरण हो, उसमें भी आत्मनिर्भरता बने, तो हर तरह से हर स्तर पर एक सशक्त वायुसेना का होना कितना आवश्यक है और कैसे में ऐसे में हमारी भारतीय वायुसेना इस मामले में खरी उतरती आपको नजर आ रही है।
कमल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जो कल का जो मोटो था भारतीय वायुसेना का, सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, आपने आत्मनिर्भरता की बात करी हुई है और तीनों शाखाएं जो है जो लड़ाई में काम आती है भारतीय वायुसेना में, और उसके अलावा कई शाखाएं हैं बट उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स की जिसका आपने जिक्र नहीं किया तो वो भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, तीसरे प्रकार के जहाज है। इसमें जो LCA जो हमारा आया हुआ है, जो फाइटर जहाज हमने HAL ने बनाया है Mark 1, जो ऑलरेडी वायुसेना के पास 38 जहाज मिले हुए हैं और कई जहाजों की डिमांड है और कई कठिनाइयां आई हैं हमारे पिछले कई सालों में, लेकिन जब वो आके भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तो उसने अपना जो जलवा है वो दिखा दिया है और वहीं तक हम सीमित नहीं रहे हैं। उसके आगे Mark 1 और Mark 2 की बात हो रही है और ऑर्डर ऑलरेडी HAL के पास पड़े हुए हैं, तो अभी उन्होंने अपना जलवा दिखाना है मैं कहूंगा। और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जब आपने बात जो छेड़ी है, ट्रांसपोर्ट C295 जो टाटा के साथ, एयरबस टाटा के साथ मिलकर इंडिया में बना रही है, पहले जो जहाज यूरोप में बन के हमारे पास आ गया है और उसके साथ साथ जो इंडिया में जहाज बनने वाले हैं उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, उसके जो एसोसिएटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो जगह पे खड़ी हो गई है और वो टाइम से प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ रहा है। उसके साथ HAL ने कई तरह के हेलीकॉप्टर जो है, जैसे आपने देखा होगा कल के शो में प्रचंड करके जहाज जो LCH के नाम से जाना जाता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, वो ऑलरेडी इंडक्ट हुआ है। उसके पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL में बना हुआ, इंडक्ट हुआ है, उसका हमने एक्सपोर्ट भी शुरू किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये तीनों जहाजों की और आगे आने वाले दिनों में और कई जहाज हैं, जैसे टाटा के साथ एयरबस ने मिलकर अभी और एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के उन्होंने बनाने की अनाउंसमेंट करी हुई है। तो जो इस तरह से जो प्रोग्रेस हुआ है पिछले 15 साल के दौरान, जो और LCA देखा जाए तो 30 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था लेकिन अभी वो आगे निभर के आया है।
अजय जी, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की अभी बात की ननोत्कर साहब ने और सशक्त एक सेना की बात की, तो ऐसे में जिस तरह से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो आजकल एलसीए की जैसे की बात कर रहे थे अभी, और अपाची चिनूक, ये आम वो एक शब्दावली आ गई है जो अक्सर हमें पढ़ने सुनने को मिल जाती है, और हम जो प्रिक्योरमेंट करते थे बाहर दूसरे देशों से, उसके अलावा अब भारत में ही जो भारत के एयरक्राफ्ट्स हैं या जो फ्लीट हैं या जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके निर्माण की अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आप इस क्षमता को कैसे देखते हैं, किस तरह से ये पूरा परिदृश्य अब बदल रहा है और कैसे हम अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं?
जी बिल्कुल, पहली बात तो ये कि मैं आपके श्रोताओं को पहले बता दूं कि कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ, दो आपने मुद्दे उठाए, एक हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू विमान। तकरीबन आने वाले 20 साल के अंदर भारत ने तकरीबन 400 लड़ाकू विमान खुद ही इंडिया में बनाने हैं। तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और आमका, इनके तीन नाम है। आमका का मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाकी तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 आपके श्रोता समझी जाएंगे। 400 लड़ाकू विमान बनने हैं, अभी 40 बने हैं, केवल 400 और बनने हैं। जहां तक कि हेलीकॉप्टर्स की बात है, करीब 270 के आसपास हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और उसके कई वर्जन हैं वो बनाए हैं। तकरीबन 1000 हेलीकॉप्टर और अगले 20 साल के अंदर बनना है। जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए, एक तो हमारी सैन्य शक्ति इससे बढ़ेगी, दूसरी बात हमारी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा, तीसरी बात नौकरियां जिसे जॉब्स कहते हैं, और चौथी बात हमारी एक वर्ल्ड में, दुनिया में एक वर्चस्व बढ़ेगा एज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो ये दो बातें अहम हैं जिसे आपने नाम लिए, चिनूक और अपाचे, ये दोनों अमेरिका से आए, बट यहां पर अब जो बनाने की प्रक्रिया है, जैसे नानोतकर साहब ने भी नाम लिया एलसीएच यानी प्रचंड हेलीकॉप्टर का, एक बड़ा सक्षम हेलीकॉप्टर है, वो इस समय लद्दाख के क्षेत्र में इंडक्ट कर दिया गया है और इंडक्ट हो रहे हैं। एलसीए लड़ाकू विमान इंडक्ट हो चुका है, और जैसे मैंने बताया अभी आपके श्रोताओं को, 400 लड़ाकू विमान और भारत में अगले 20 साल में बनने हैं। तो 400 लड़ाकू विमान और तकरीबन 1000 हेलीकॉप्टर, ये बनने की अगले 20 साल में कवायद भारतीय सरकार ने रखी हुई है। उससे मेरा मानना है कि नौकरियां और भारतीय सैन्य शक्ति दोनों पे फर्क पड़ेगा। कमल,
और एक जो और हम अप्रोच देख रहे हैं ननोत्कर साहब, वो है नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन की, जो पूरा सिस्टम है डिफेंस सिस्टम को, और खासतौर पर जो भारतीय वायुसेना है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। तो इस मामले में आपके क्या विचार हैं, किस तरह से हम इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं?
कमल, ये काम बहुत साल पहले से शुरू हो गया है, और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होनी चाहिए किसी भी सेना के पास
जी,
वो इंटीग्रेटेड सिस्टम इनहाउस डेवलप करके भारतीय वायुसेना ने एक लीड लिया था। 10-11 साल पहले हमने उसको लॉन्च किया हुआ है, और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम हो रहा है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में कम्प्लीट उसका सोल्यूशन जो सेना चाहती है, उस हिसाब से जो स्टेप आ गया है कि बाकी दो सेनाओं के साथ इंटीग्रेशन हो जाए, और जो लीगसी सिस्टम है और जो नए इंडक्ट हो रहे हैं सिस्टम, उनको उसी सिस्टम में एमलगमेट किया जाए, तो उससे क्या होगा। और दूसरी बात यह है, आपने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ साथ एक एआई का जो एलिमेंट है वो भी उसमें लाया जा रहा है, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण किसी भी लड़ाई में होता है कि एलिमेंट सारे होते हैं, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस आपको ठीक ठाक हो जाए, तो उसके ऊपर आपका डिसीजन मेकिंग, जो आपको एक निर्णय लेना है स्प्लिट सेकेंड के अंदर अंदर कमांडर को, वो निर्णय लेना बहुत बहुत अहम होता है, क्योंकि आपका निर्णय आपके विजय को सामने रखता है। तो उसके लिए जो आपके पास उस कम समय में कैसे ये सारी चीजें आपके आगे आए, इसके लिए ये सारी चीजें नेटवर्क, एक तो नेटवर्क सेंट्रिसिटी और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमलगमेशन, ये दो चीजें अगर सही मायने में हो जाए, और इसके लिए जो डीआरडीओ के साथ और बाकी जो प्राइवेट एजेंसीज है उन उसके साथ, वायुसेना ने पिछले करीब 10 साल पहले ये सिस्टम जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो एयर डिफेंस को और आपके सारे जो बाकी एलिमेंट्स है, जैसे अजय जी ने कहा कि अटैक यूएवी हमारे पास है, हमारे पास थे लॉयटरिंग म्यूनिशन पहले से था, लेकिन अभी अटैक यूएवी आ रहे हैं जो जिनकी क्षमता कई मायने में बढ़ी हुई है, तो उन सब चीजों को और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को, सरफेस टू सरफेस वेपन्स को, ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक सही मायने में उसको हाईली एफिशिएंट वे में यूज किया जाए। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और जो स्पेस डोमेन है उसको भी उसमें अमेलगमेट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारतीय वायुसेना ने जिसमें लीड ली हुई है, नेवी ने अच्छा उसमें काम शुरू किया हुआ है, इंडियन नेवी ने, और थल सेना का जो सारे एलिमेंट्स है, जो पुराने एलिमेंट्स है और जो अभी नए इंडक्ट हो रहे एलिमेंट्स, उसके सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हुए हुए रेडियो सेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हैं। क्या होता है, हम अलग अलग पहले दिशा में जाके खरीदी करते थे, लेकिन अभी जो है सारी जो ऐसी चीजें जो हम बाहर से लाते हैं उसके लिए एक कॉमनैलिटी होनी चाहिए, उसके लिए बहुत अहम महत्व दिया गया है पिछले 5 से 10 साल में, तो उसकी वजह से अभी जो बाहर से खरीदेंगे हम चीजें वो इस तरह से फोकस होगी ताकि हम आने वाले दिनों में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में कहीं कोई चीज मिस आउट ना करें।
बिल्कुल अजय जी, अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के जो दूसरे देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं और जो ट्रेनिंग्स हैं, उनका कितना महत्व होता है किसी भी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने में, और अगर हम भारत की वायुसेना की जो ऑपरेशनल क्षमता है उसकी बात करें तो इन ज्वाइंट वेंचर से किस तरह से इसमें मदद मिलती है, और साथ में किस तरह से भारत का भी एक तरह से प्रदर्शन होता है कि जिस तरह से क्षमता बढ़ रही है वो क्षमता भी एक तरह से सामने आ सके।
जी, अभी एक हाल फिलहाल में पिछले महीने तारंग शक्ति नामक एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है जिसमें तकरीबन 12 मुल्कों की वायुसेनाएं आई थी, सारे जिसे पश्चिमी देश कहा जाता है, नाटो के अलाइज थे सारे उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था, और पहली बार जापान ने अपने लड़ाकू विमान इंडिया लाए थे। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज की क्या अहमियत थी। अब वो एक्सरसाइज से जैसे आपने पूछा कि क्या सीखते हैं, एक तो ऑपरेटिंग फिलॉसफी जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, सैन्य शब्दों में ऑपरेटिंग फिलॉसफी, यानी कि एक लड़ाकू विमान की एक फ्लीट है वो ऑपरेट कैसे करती है, उसका रिएक्शन टाइम क्या है, और वो एक दिए हुए अगर उसे एक मिशन दिया गया उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे उसको अप्रोच करते हैं, ये सारी सेनाएं इसको ऑब्जर्व करती हैं। उसके अलावा जैसे ये तारंग शक्ति एक्सरसाइज हुई उसमें टास्क रखे गए थे, टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क में अब आप क्षमता लगाते हैं कि अगर अमरीकी फाइटर पायलट इतनी देर में करता है, अमरीकी टीम इतनी देर में करती है, जैपनीज टीम इतनी देर में करती है, जर्मन टीम इतनी देर में करती है, हमारी टीम कितनी देर में करती है, उससे ये आंकलन लग जाता है कि हम दुनिया में विश्व की सेनाओं में कहां खड़े हैं। अब रूस एक बहुत बड़ी सेना है, उनके साथ हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रूस का हमें पता है। अब जो पाश्चात्य या पश्चिमी सेनाएं हैं, नाटो के एलाइज हैं या जापान है, इनकी कहां क्षमताएं हैं, ये इन एक्सरसाइज में जाके पता लगता है। अमरीका के साथ हम कई साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, खैर इतनी बड़ी कई नेशन की एक्सरसाइज जिसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कहा जाता है, इसमें हमने खुद होस्ट किया है बहुत सालों बाद, और बहुत बड़ी अहम बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही। तेजस विमान, बहुत सारे विदेशी जो बड़े बड़े फाइटर पायलट आए थे, उनके सीनियर अफसर आए थे, उन्होंने विमान देखा, कईयों ने उसको उड़ाया, कईयों ने उसको जाना, जांचा, परखा, और भारत की सैन्य शक्ति और बनाने की शक्ति, जैसे हेलीकॉप्टर बनाने की शक्ति या कोई फाइटर जेट बनाने की शक्ति, जैसे मैंने तेजस का नाम आपको बताया अभी, इन चीजों को उन्होंने भी आंका और जाके अपने देशों में बताएंगे कि भारत में ये हो रहा है। तो ये सब चीजें बाहर, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक लफ्ज है, थिंग्स ट्रेवल, दीज थिंग्स ट्रेवल, तो कमल इसका ये फायदा है।
रणोत्कर साहब, आपसे भी मैं इसी पर टिप्पणी चाहूंगा, जो ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं इनका क्या महत्व होता है, किस तरह से ये एक तरह से हमारे लिए भी, भारतीय वायुसेना के लिए भी, और ट्रेनिंग के पर्पज से भी, और दूसरे देशों के लिए भी क्षमता को समझने का एक अवसर देती है।
कमल, बहुत बढ़िया, मैं वेट कर रहा था इस चीज की, क्योंकि थोड़ा उतावला सा हो गया था समझ लो, क्योंकि 2003 में पहली बार यूएस एयरफोर्स हमारे मुल्क में आके एक्सरसाइज करके गया था, कोप इंडिया 2003, और उसके बाद में मैं खुद लीड करके ले गया था हमारे फाइटर जहाज, पहली बार हिंदुस्तान के बाहर फाइटर जहाज और हमारे टैंकर लेके गए थे अलास्का, जो 12 देशों की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, जिसमें सेम नंबर 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जापानी एयरफोर्स था, कैनेडियन एयरफोर्स थे, जर्मन एयरफोर्स पहली बार वहां आ गया था हमारे साथ जब हम गए थे तब, तो मेरे को मौका मिला था इस एक्सरसाइज को प्लान करने का और एग्जीक्यूट करने का। और जैसे कि अजय ने बताया, सबसे अहम बात हम सीखते हैं वो इंटर ऑपरेबिलिटी की, तो क्योंकि अलग अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिस देश से आप, क्योंकि मंगोलिया भी उस समय ऑब्जर्वेशन के तौर पे आया था देखने के लिए कि सारे चीजें क्या है, क्या इक्विपमेंट ऑपरेट होता है अलग अलग देशों में, और उसका एक फायदा यह है कि कहीं भी ग्लोबल सिनेरियो में अगर हमको हिस्सा लेना होगा तो हम कहां फिट हो जाते हैं उस ग्लोबल सिनेरियो में। और दूसरी बात अजय ने जो बहुत अच्छे से समझाई कि भाई हमारी कैपेबिलिटी कहां तक है, हमारी कैपेसिटी कहां तक है, अगर आप सब दुनिया के सारे अच्छे अच्छे एयरफोर्सेस के साथ हम अगर अपने आप को कंपेयर करें तो हम कहां पर है, और वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई है। और देखिए, अभी इस साल हमने यहां अपने देश में वही नंबर 12 देशों को हमने होस्ट किया है, हमारे वो मेहमान रहे हैं, और पूरी तरह से दो जगह सुलूर में और जोधपुर में हमने एक्सरसाइज करी, यानी हमारे देश के दो कोने समझ सकते हैं हम, एक साउथ इन पेनिनसुला और एक राजस्थान के रण में। और ये एक्सरसाइजेज ऐसी थी कि जहां पे एयरफोर्सेस ने अपने अपने सबसे बढ़िया इक्विपमेंट लेके आए थे और पूरी तरह से उनको इंटीग्रेट किया हुआ था हमारे जो भारतीय सिस्टम है उसके अंदर, हमने जांचा कि कौन सा एयरफोर्स कहां तक हमारे पास है, यानी परफॉर्मेंस के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी की बात बहुत अहम बात है, क्योंकि कहीं भी अगर जरूरत पड़े और भारतीय वायुसेना को अगर बुलावा आ जाए तो हम ज्यादा सोचे बगैर हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं जहां भी जरूरत हो। तो ये जब बहुत बड़ी कैपेबिलिटी जो भारत ने 2004 से लेके आज तक जो हमने बिल्ड करी हुई है, हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया। और पहले बार जब हम बाहर लेके गए थे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने जब 2003 में खुद होस्ट किया था यूएस एयरफोर्स को, तो वो तो पहला बेबी स्टेप था हमारा। और वहां से लेके आज 12 नेशंस को होस्ट करना, ये मेरे ख्याल इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ 20 इयर्स में बहुत बड़ी बात है, जो बड़े बड़े देशों ने आज तक वो कैपेबिलिटी दिखाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ पूरी मैं शाबाशी देना चाहूंगा भारतीय वायुसेना को और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको। और उसके साथ साथ अजय ने एक बहुत बड़ी बात आपको बताई है, ये हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी उसमें है जिसका प्रदर्शन हमने किया हुआ है इस बार पूरे दुनिया को। देखिए ये कैपेबिलिटी अगर कई और मुल्कों के साथ हम कंपेयर किया जाए तो हम वो कैपेबिलिटी छोटी समझेंगे, लेकिन जब वो कंपेयर किया जाता है सबसे एडवांस मुल्कों के साथ और वो उसकी सराहना करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
आधुनिक से अत्याधुनिक तकनीक की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा या बात करना चाहूंगा इस विषयों पर। जैसे अजय जी बात हो रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, हाइपरसोनिक जो तकनीक है उसकी, आपने स्पेस की भी बात की, तो भारतीय वायुसेना इन मामले में किस तरह से एक अपनी एडवांसमेंट को देख रही है, कितनी क्षमता है और कितना कुछ आगे करने की योजनाएं हैं?
जी, पहले तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम कीज होती हैं, उसका एक टेस्ट हो चुका है, पिछले कोई एक साल सवा साल पहले टेस्ट हुआ था क्वांटम कीज का, जो कि एक रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, जो कि कई मंत्रालय उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है। और तीसरी चीज जो स्पेस की मैंने आपको बात बताई दी है, स्पेस में कैसे हम लो अर्थ सैटेलाइट्स और कैसे उन पे काम कर रहे हैं। लो अर्थ यानी जो परंपरागत सैटेलाइट होती हैं थोड़ी ऊंची हाइट पर होती हैं, लो अर्थ थोड़ी नीचे होती हैं, और उन पे हम काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना तीनों के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं जो कि बातचीत करती हैं एक दूसरे से और ग्राउंड स्टेशन से। भारतीय वायुसेना ने अपने आप को नेटवर्क कर रखा है, जैसे ननोदकर सर बता रहे थे, नोड्स बने हुए हैं जो कि सारे वायुसेना को ऑब्जर्व करते हैं। जो दुश्मन की तरफ से कोई अगर हथियार, कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल आ रही है उस पर नजर रखते हैं, उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो नोड्स बताते हैं। मिसाल के तौर पर आपके श्रोताओं को बता दूं मैं कि जब बालाकोट के ऊपर या उसके बाद नौशेरा के ऊपर जो हमारा एयर ड्यूल चल रहा था पाकिस्तान के साथ एलएसी के आसपास, तो वो देखिए जम्मू के ऊपर थी जगह और उसको कंट्रोल कर रहे थे बरनाला पंजाब में एक जगह, वहां पर बैठा है कंट्रोलर, वो करीब 600 किलोमीटर दूर है उस जगह से। तो रियल टाइम में कम्युनिकेशन चल रहा था कि वो जो अफसर बैठा था बरनाला में पंजाब में, वो जम्मू के ऊपर एक फाइटर जेट्स को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्रणालियां वायुसेना में आ चुकी हैं, जो क्वांटम और एआई की आपने बात करी वो भी आ रही है, जिसे कहते हैं कि वो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे टेस्ट चल रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे वी ऑलरेडी हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स, पर उसके अलावा जो फर्दर उनकी वो क्षमताएं हैं, उनकी रेंज है बढ़ाने की बात चल रही है। कमल
जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, और निश्चित रूप से इस 92वीं वायुसेना की वर्षगांठ पर हमने कोशिश की कि अपने श्रोताओं को न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता तकनीक से अवगत करवाएं, बल्कि जो एक इतिहास रहा है उस पर भी एक झलक देते हुए उस गौरव को भी आपके सामने रखें। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम, इस चर्चा के माध्यम से हम काफी कुछ अपनी वायुसेना के बारे में एक समझ पैदा करने में हमारे श्रोताओं के लिए हमारी ये कोशिश सफल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय वायुसेना की इतिहास और क्षमता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक एयर वाइस मार्शल SJ नानूतकर और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।